स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरे चरणों में मैं झुका
शरण में लेके इच्छा
से मन में जीवन जल मुझको पिला। तू यहोवा शालो शांति का राजा है तेरा नाम। दुश्मनों के बीच बोता प्रेम की बीज जिससे पैदा हो शांति और प्यार।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूरक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और सुने के पश्चात अपने पत्रों के द्वारा हम तक अपनी आशीषों को पहुँचाते हैं। मेरे मित्र, यदि आपके जीवन में भी प्रभु कार्य कर रहा है, आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं, तो पत्र के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। मैं आपको इस समय बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों नए नियम में से फिलिपी की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिस पत्री का लेखक पौलुस प्रेरित है, जो उसने कैद में रहते हुए लिखे हैं। फिलिपी की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो पौलुस से बहुत प्रेम करती है और पौलुस उनसे प्रेम करता है, और इस पत्री के माध्यम से हम उन बातों को सीख रहे हैं जो हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए अति आवश्यक है। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर भी मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए। उसने अपने आप को दीन किया और हमें बताया गया कि हमें भी एक दूसरे को दीनता के साथ स्वीकार करना है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग जगह पर दूर दराज में रहकर आपके वचन को सुनने और सीखने के लिए हमेशा तैयार बैठते हैं। आज जब हम आपके वचन को एक साथ फिर से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। विशेष हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में दुखी हैं, निराश हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कोई भी प्रेम नहीं करता है। हो सकता है कि उसकी पत्नी, हो सकता है उसके बच्चे, और हो सकता है कि हमारे कोई जवान भाई बहन जो अपने माता पिता से नाराज हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक के जीवन से बातचीत करें, ताकि हर एक इस बात को समझने पाए कि आप सारे मानव जाति से प्रेम करते हैं, हमारे उन भाई बहनों से भी आप प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए अपने जीवन को कलवरी क्रूस पर दे दिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होइए, उनके जीवन से बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर का मन अर्थात मसीह का महिमान्वन, पिता परमेश्वर के मन में मसीह के महिमान्वन की ही बात रहती है। हमने प्रभु यीशु के दीन होने के 7 चरण देखे हैं, और अब हम उसके महिमान्वन के 7 चरण को अर्थात कदम को देखेंगे। परमेश्वर का मन मसीह के महिमान्वन का मन है। तो आइए आप मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद को निकाल लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम देखें पहला चरण, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जी हाँ, इस जगत में पिता परमेश्वर का सर्वोच्च उद्देश्य है कि प्रभु यीशु अपने इस सृजित जगत में महिमान्वित हो और इस पृथ्वी पर मनुष्यों के मध्य महिमान्वन का कारण हो। इस पृथ्वी पर जहां मनुष्यों ने परमेश्वर से विद्रोह किया है, मेरे प्रियो, इस छोटी सी पृथ्वी को महत्वपूर्ण बनाने वाली जो एकमात्र बात है वह यह है कि प्रभु यीशु यहाँ मरा और कुछ नहीं। जी हाँ, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष की तुलना में एक तिनका मात्र है। यदि पृथ्वी नष्ट हो जाए तो अंतरिक्ष को कोई अंतर नहीं होगा। यह एक सत्य है। किसी ने बहुत ही अच्छा इसके विषय में कहा है कि मनुष्य एक छोटे से ग्रह पृथ्वी की त्वचा पर एक कीटाणु है, यह हम हैं। मनुष्य को सम्मान प्रदान करने वाली एकमात्र बात जिसने मनुष्य को स्वर्ग की ओर निहार कर स्तुति गान हेतु प्रेरित किया वह यह है कि प्रभु यीशु पृथ्वी पर आया और मनुष्य के लिए मर गया, क्रूस पर अपनी जान दे दी। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं दूसरा चरण, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यदि आप उसका नाम व्यर्थ में लेना चाहें तो इस पद को स्मरण रखें। एक वायुयान चालक के यान में बम था, परंतु वह सुरक्षित उतर आया और भीड़ के पास खड़ा खड़ा कह रहा था, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। मैं नहीं जानता कि वह प्रभु का नाम व्यर्थ में ले रहा था या नहीं। यदि वह ऐसा करता था तो परमेश्वर उस पर दया करे। मैं आशा करता हूं कि यह उसकी प्रार्थना है। प्रभु यीशु का नाम इस पृथ्वी के सब महापुरुषों से ऊपर महान है, वरन स्वर्ग दूतों से भी महान है। हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। जी हाँ, प्रभु यीशु का ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही हम सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों के बदले में मरा, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, न कोई संत, न कोई महात्मा, और न कोई स्वर्गदूत, और न कोई और व्यक्ति, सिर्फ प्रभु यीशु। इसलिए उसका नाम सारी पृथ्वी में सबसे महान है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए। इस पद में हम प्रभु यीशु के महिमान्वयन के अगले तीन चरण को देखते हैं। तीसरा चरण है कि यीशु के नाम पर। यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। यीशु के जन्म से पूर्व स्वर्ग दूत ने कहा था मत्ती सुसमाचार 1:21 में, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, अब भविष्यवाणी के विषय में सुने। मत्ती 1:22-23 पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे मित्रों, आप इसे स्वीकार करें या ना करें, यह सत्य है कि प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार करता है। आज लोग प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। यह आपकी गलती है। आपको मौका दिया गया है कि आप प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर लें। आपको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप नहीं करते हैं तो यह आपकी गलती है। प्रभु यीशु इस जगत में उद्धार देने के लिए आया क्योंकि वह हमारा उद्धार करता है। इसके बारे में कई वर्ष पूर्व भविष्यवाणी भी की गई थी जो सत्य हुआ। मेरे मित्रों, क्या आप मुझे बाइबल में एक भी ऐसा स्थान दिखा सकते हैं जहां उसे इमानुएल कहा गया हो? जब मैं सेवा में आया तब मुझे कुंवारी से उसके जन्म की समस्या नहीं थी। वह परमेश्वर था और मानव स्वरूप धारण करने के लिए उसे जन्म लेना ही था। मेरी समस्या तो यह थी कि उसका नाम इमानुएल होगा। इसका अर्थ तो यह होना चाहिए कि भविष्यवाणी यीशु में पूरी नहीं हुई। ओह मेरे मित्रों, यह भविष्यवाणी की एक सर्वोत्तम पूर्ति है। स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखना। ध्यान दीजिए, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस पर भी विचार करें। आप मनुष्य को यीशु नहीं कह सकते। वह मनुष्य जाति तो क्या आपका अपना, परंतु खुद का ही उद्धार नहीं कर सकता। हम सब एक ही नाव में हैं। मानव जाति की नैया डूब रही है, वह धीरे धीरे गहराई में जा रही है। यदि कोई उद्धार कर पाएगा तो उसे बाहर से आना है। कुछ लोग हैं जो रस्सी फेंकते हैं, परंतु वे भी तो डूब जाते हैं और डूब रहे हैं। जहाज के बाहर से कोई रस्सी फेंकेगा तब कुछ बात बनेगी। मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। आज मनुष्य का बलि चढ़ा रहा है ताकि उसे उद्धार प्राप्त हो, शांति मिल जाए। कोई पशु तो कोई व्यक्ति और कोई कुछ कुछ चढ़ा रहा है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। मेरे मित्रों, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ध्यान दीजिए, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कैसे करेगा? क्योंकि वह इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। बेतलहम का वह शिशु परमेश्वर हमारे साथ है। उसने स्वर्गदूतों की समानता में नहीं, मनुष्य की समानता में जन्म लिया। वह इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। क्योंकि वह यह है इसलिए उसे यीशु कहा गया। मेरे मित्रों, अन्य कोई नहीं जिसे यीशु कहा जा सकता है। परमेश्वर कहता है, मैं उसके इस सांसारिक नाम को सब नामों से ऊंचा करूंगा। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब प्रश्न है कि ये अपने लोग कौन हैं? ये आप और मैं, हम सब मानव जाति हैं, क्योंकि हम पाप में थे और परमेश्वर मुझे और आपको उस पाप से छुटकारा देना चाहता है, और इसीलिए वह इस पृथ्वी पर आया ताकि हम उस आनंद को प्राप्त करें, उस उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वह उस परमेश्वर को इस पृथ्वी पर भेजा है और इन मनुष्यों के बीच में रखा है ताकि वह उन सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम उसे दे। आइए अब हम देखेंगे चौथा चरण, स्वर्ग में अर्थात सब नामों से ऊपर। पांचवा चरण है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर के सब नामों के ऊपर। और तब छठवां चरण है पृथ्वी के नीचे के नामों से ऊपर। मेरे प्रिय मित्र, यह पद उन लोगों का हथियार है जो कहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार होगा। किसी ने कहा कि यहूदा इस्करियोती और शैतान भी स्वर्ग में साथ साथ घूम रहे होंगे क्योंकि सबका उद्धार होगा। मेरे प्रियो, यह दुर्भाग्य की बात है क्योंकि कुलुसियों की पत्री एक अध्याय उसके 20 के साथ इस पद की तुलना करने पर इसका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। फिलिपियों की पत्री में पौलुस प्रभु यीशु के प्रभुत्व को दर्शाना चाहता है। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक वस्तु प्रभु यीशु की प्रभुता स्वीकार करेगी। इसमें नरक भी प्रभु यीशु की प्रभुता को मानेगा क्योंकि वह प्रभु है, परंतु घुटने से उद्धार नहीं है। कुलुसियों की पत्री एक अध्याय उसके 20 पद में पौलुस प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य, मेल मिलाप के कार्य की चर्चा करता है। किसका मेल कराया गया है, किसको मुक्ति मिली है, क्या इसमें नरक भी है? जी नहीं, कुलुसियों की पत्री में नरक पृथ्वी के नीचे की वस्तुएं नहीं मानी गई है क्योंकि यह पद मुक्ति की चर्चा कर रहा है और नरक की मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इन दोनों पदों को साथ रखने से स्पष्ट होता है कि नरक के निवासी प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगे क्योंकि वह प्रभु है। वे उसकी प्रभुता स्वीकार करेंगे, बस वहीं तक। आगे हम पढ़ते हैं, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। मेरे मित्रों, आप कोई भी क्यों ना हो, एक समय ऐसा आने वाला है जब प्रभु यीशु का राज्य होगा क्योंकि वह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके पाप के बदले में मर गया और उसने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उसके साथ नहीं होंगे, लेकिन निश्चय जान लीजिए कि हर एक नाम यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेगा। अब प्रभु यीशु के महिमान्वयन का सातवां चरण हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वह यह नहीं कहता है हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यह बड़ी रोचक बात है कि नरक में भी प्रभु यीशु की प्रभुता मानी जाएगी, जिसके कारण उनके कष्ट और बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ चाहता हूँ, यदि प्रभु आपका प्रभु नहीं है तो उसे प्रभु कहने की गलती ना करें। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 21 से 23 पद में उसने स्वयं चेतावनी ही दी है कि अनेक जन उसे प्रभु कहेंगे और उसके नाम में चमत्कार भी दिखाएंगे, परंतु वह कहेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मेरे मित्रों, आप उसे अपना प्रभु कहने से पूर्व उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें तो यही अच्छा होगा। यदि वह आपका उद्धारकर्ता है तो आप उस प्रभु के आज्ञाकारी बने। मैं तो मनुष्यों से यह गीत भी सुनना नहीं चाहता, यीशु कैसा दोस्त प्यारा है। जी हाँ, वह हमारा मित्र है या ठीक है, परंतु यीशु के वचन को आप सुने। योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 14 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र होगे। अतः यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके मित्र हैं। जब तक उसकी आज्ञा ना मानेंगे तब तक हम उसके मित्र नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। पौलुस का मन मसीह की बातें हैं। जी हाँ, हमने मसीह के मन को देखा, उसकी नकल नहीं की, अर्थात हम उसकी नकल नहीं कर सकते, वह केवल प्रसारण से होता है। मसीह का मन तुम में हो, यह हम में पवित्र आत्मा का काम है, जिससे हम में दीनता और नम्रता के फल उत्पन्न होते हैं। मेरे मित्रों, अब हम रोमी सड़कों पर चलने वाले यीशु के मन को देखेंगे। हम उसे रोमी घरों में और रोमी कारावास में भी देखेंगे। हम तीन उदाहरणों को देखेंगे जो बाइबल में है, पौलुस का मन, तीमुथियुस का मन और इपफ्रुदीतुस का मन। इपफ्रुदीतुस फिलिपी की कलीसिया का पास्टर था। उस अन्य जातीय राज्य में इन तीन पुरुषों ने मसीह का मन प्रकट किया और शायद ऐसे 30,00,000 विश्वासी और थे। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम क्या मसीह के मन को प्रकट कर रहे हैं? आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उसके मन को प्रकट करें। आज प्रभु यीशु मसीह मुझ में और आप में होकर अपने कार्यों को प्रकट करना चाहता है। क्या आज आप उसे प्रकट करने के लिए तैयार हैं? वह आपसे प्रेम करता है, वह आपको बचाना चाहता है, क्योंकि वह उद्धार करता है और सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, ताकि हम उस दिन उसके निकटता में बने रह सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू यहोवा शालोम, शांति का राजा है तेरा नाम। दुश्मनों के बीच बोता प्रेम की बीज, जिससे पैदा हो शांति और प्यार। विश्वास